उसके बाद नेक्स्ट चीजें, चार चीजें इकट्ठी एक हदीस में आ रही हैं। नंबर एक, जिना को हलाल ठहराना। नंबर दो, मर्दों के लिए रेशम को हलाल समझना। नंबर चार, शराब को हलाल करार देना। और पांच, गाने बजाने के साजो सामान को हलाल करार देना। ये पांचों इकट्ठी क्यों है लिस्ट में? क्योंकि इन सब का एक ही हदीस में जिक्र है। हदीस पढ़ लीजिए, ये हदीस पढ़कर तो मुझे नहीं लगता कि एक जुमला भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है। ये अपनी वजह से खुद ही बात समझ आ रही है। इमाम बुखारी अबू आमिर से कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयकूनन्न मिन उम्मती अक्वामुन यस्तहिल्लून अलहिरा, हिर्रा भी हो सकता है, हिरा वल हरीरा वल खमरा वल माजिफ। यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग जरूर होंगे जो जिना, रेशम, शराब और गाने बजाने के साजो सामान को हलाल समझेंगे। उन्हीं में से कुछ लोग एक बुलंद पहाड़ के पहलू पर जरूर पड़ाव डालेंगे। शाम के वक्त इनका एक चरवाहा इनके मवेशी लेकर इनके पास आएगा तो वो उससे कहेंगे, हमारे पास कल आना। अल्लाह ताला यानी इन्हीं में से कुछ लोगों को रात को हलाक कर देंगे और इनके ऊपर बुलंद पहाड़ गिरा देंगे और इनमें से दूसरों यानी उनकी सूरतों को मसख करके रोजे क्यामत तक के लिए इन्हें बंदर और खिंजीर बना देंगे। इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखिए, ये मुस्तकबिल की खबरें नबी सल्लम से मिली। जो जुर्म है जरा उस पर आपने गौर किए, जिना आम किस नाम पे, स्कैंडल अफेयर, और ये तो चलता ही है, लिविंग टुगेदर, डेटिंग, अब ये तो हर एक ही करते हैं। यानी हम फिर नॉन मुस्लिम्स को ना टच करें तो फायदा है। अपनों को देखिए, आज उम्मत मुस्लिमों में जो जिना के बदकारियों के तरीके हैं, अल्लाह की बना कहीं आपको कोई मीडिया से रेलेवेंट चीजों से वास्ता पड़ जाए। एक बहन ने अपना इतना दिल खराश वाक्या सुनाया और नसीहत चाही थी कि उसका भाई हाफिज़े कुरान था, अच्छा नेक बच्चा था, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी और जितना कोई एक उम्र का दौर होता है 25-30 साल की उम्र, बेहतरीन इंसान था, कहाँ किसी दोस्त के कहने पे फोटोग्राफी सीखी, वहां से वीडियो बनाने में लग गया, वीडियोस बनाता बनाता वो किसी टीवी चैनल के हत्थे लगा, वहां से वो शायद दुबई चला गया, यानी उसका प्रोफेशन चेंज हो गया। और वो कहती है, मेरे भाई, उसकी बीवी, वो बच्चे बिल्कुल खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इस शो बिजनेस में आया, वहाँ एक औरत इसके साथ ताल्लुक हुआ, वो मॉडल थी कोई, उसके साथ कहीं बाहर पिक्चराइजिंग में गए, ताल्लुक बना, क्या उससे फिर हालात हुए, कहती हमारा पूरा खानदान उजड़ गया सिर्फ इस एक औरत की वजह से, भाई भाभी के ताल्लुक खराब, माँ बेटे के खराब, और वो सिर्फ भाई अब रिग्रेट करता है और जो भी उसकी जिंदगी है बिल्कुल अपसाइड डाउन होगी। मान नहीं सकता कि ये कल का हाफिज बच्चा और इतना दीनदार था क्योंकि उसको प्रोफेशन ऐसा मिल गया। देखिए, पढ़ा लिखा बंदा गुनाह करता है ना तो अच्छे तरीके से करता है, अनपढ़ और जाहिल जब गुनाह करता है ना तो वो जहालत के ही तरीके से करता है। आप देखिए कि चीज़ का इस्तेमाल जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे मुल्कों की जो रिपोर्ट्स अंदर खाते की आप देखें, वो औरतें जो बाहर मर्दों में जाके काम करती हैं वो उससे ज़्यादा परेशान है जितनी वेस्ट में औरत काम करती है। यहाँ एक औरत रात 10 बजे भी बाहर होगी ना, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। और आप जरा जाकर देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, टिकट चेंज कराने आप पीआईए के ऑफिस चले जाएं किसी एयरलाइन में, वहां लड़के लड़कियां आपस में शोखियां कर रहे होते हैं। आप बैंक अकाउंट खुलवाने चले जाएं, बैंक में जाएं, लड़के लड़कियां ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे होते हैं, दिल करता है कि वहां उनको अच्छी सुनाकर आए, ना कोई पूछने वाला ना बताने वाला, क्योंकि जहालत है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये जितनी चीजें हैं, जिना हलाल ठहर गया, ये जरा ढका छुपा है, जरा सा खुले तो फिर आप देखें कि वेस्ट को भी हम पीछे छोड़ गए। फिर आप देखिए कि मर्दों के लिए रेशम हलाल, और अल्लाह माफ करे हलाल कब करते हैं हम, जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन शादी, दूल्हा की शेरवानी रॉ सिल्क की, दूल्हा रेशम पहने ना तो फिर शादी नहीं बनती, अंगूठी ना गोल्ड की पहनाए सास तो गोया कि वो हकीकी सास ही नहीं है। सच बताइए, वो उम्मत जिसके अंदर एक मर्द को आप रेशम और सोना पहनने पर मजबूर कर दें, क्या वो उम्मत अल्लाह के अजाबों को नहीं बुला रही? फिर आप देखिए, शराब को हलाल करार देना मगर किस नाम से, नाम बदल दो, सॉफ्ट कर दो उसको, कहीं उसको आबे जू कह दो, कहीं उसको क्या क्या नाम लोग लेते हैं, ये लीकर है, ये फुलां है, ये फुलां है, किसी भी तरह से ऐसी चीजों की इजाजत नहीं। और पांचवी चीज देखिए, गाने बजाने को हलाल समझना। ये नहीं कहा जा रहा गाना बजाना, नोट कीजिए, गाने बजाने के साजो सामान को हलाल समझना। आज लोग इसको कंट्राडिक्शन कहते हैं, कहते हैं इट्स ओके, ऐसे ये मौलवी हैं, म्यूजिक जायज है, नातों के साथ लोगों ने म्यूजिक लगाया हुआ है, लोग इंडियन गानों की धुनों पे हम्द पढ़ते हुए दिखते हैं, और कई लोग हैं वो कहते हैं बिल्कुल गाना जायज़ है, म्यूजिक भी जायज़ है, ये तो फितरत की आवाज़ है। आप देखिए इस पर एक पूरी बुक है इन्हीं राइटर की है, अगर आप पाकिस्तान जाए तो लेकर आइए, वेस्ट में लेके आने के लिए बहुत खूबसूरत किताब है, जिना और उसकी संगीनियाँ, इतनी मोटी बुक है, उसके अंदर आपको वो हर चीज़ है जो कुरान और सुन्नत में इस मौजू पर है। लेकिन आज जिस तेजी से हमारा मीडिया आजाद हो रहा है, फिर ये भी कहना पड़ेगा, देखिए मीडिया अपनी जगह बुरा नहीं है, आप मीडिया से कुरान नशर करें, हम जैसों की आवाज जिधर 100 लोगों तक पहुंचती है तो हजारों में पहुंच जाएगी, लाखों में पहुंचेगी। लेकिन क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, पिछले 10-15 साल में जो हमारा पाकिस्तान का मीडिया आजाद हुआ है, क्या आपको उसके असरात नजर आ रहे हैं? मैं कहती हूँ सिर्फ एक चलते फिरते किसी के घर में आप एडवर्टाइजमेंट देख के हैरान हो जाते हैं। हम जब कभी बच्चे थे और घरों में टीवी थे, हम सबके घरों में थे, कोई ये तो नहीं है कि हम सारे आसमान से उतरे हैं। यकीन करें कि कोई फिल्म ऐसी और उसके अंदर 2 मिनट का एक सीन ऐसा होता था कि बाप भाई के हाथ में कंट्रोल होता था, और फिल्मों के नाम के साथ होता था, ये बच्चों के देखने वाली है, ये बच्चों के देखने वाली नहीं। ये अलग बात है कि वो अम्मी अब्बू के भी देखने वाली थी कि नहीं। आज क्या है, एडवर्टाइजमेंट देखती ना मैं कभी कभी, अभी बहुत दिन से तो नहीं हुआ लेकिन पिछले साल में काफ़ी ट्रैवलिंग थी, और जाहिर है जहाँ भी जाते हैं लोगों के साथ रहने का इत्तेफाक होता है, तो जब किसी के घर में, बाज़ लोगों ने सारा दिन टीवी खोला होता है, आवाज़ कम कर देंगे, आवाज़ बंद करेंगे, नहीं रौनक रहती है, ये तो घर का फर्द है, चलो ठीक है आपकी मर्जी है। तो जब वो चैनल चल रहे होते हैं ना, तो मैं कई दफ़ा मैंने पूछा है कि ये इंडियन चैनल चल रहा है, क्योंकि हम जब कभी टीवी देखे होंगे हमने, तो उस वक्त में इंडियन मूवीज में ये हरकतें होती थी जो आज की एडवर्टाइजमेंट में होती हैं। कहते हैं, नहीं ये तो वो फलाना नाम आपको भी आते होंगे, एक दो मुझे भी आता है, मैं लेना नहीं चाहती। ये पाकिस्तानी चैनल्स हैं, क्या आप बताइए यहाँ से जो लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है वो जिंदगी में है? आपकी अपनी बीवी ऐसी है जो एडवर्टाइजमेंट में बीवी नाचती कमर लुभाती चाय का कप दे रही है? किसने ऐसे चाय का कप आज सुबह अपने शोहर को दिया जैसे वो एडवर्टाइजमेंट में देती है? किसी ने दिया, तभी तो फिर लड़ाई होती है, वो कहते हैं तू ऐसी क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे आप भी तो वैसे नहीं है। यानी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, फूल लगा रहे हैं, खिड़की में से घूम के आ रहे हैं और पत्ती दी, और वो डालडा का डब्बा भी खोलती हैं तो अदा से, घर आए आपसे तो लहसुन प्याज की बू आ रही है, तो लड़ाई तो होनी है। आप यकीन करें मीडिया ने आज हमारी घरेलू जिंदगी पे इतना गहरा असर डाला है, एक माँ आंसू बहाती भी आ गई कि इतने लाड से मैंने अपने बच्चे की शादी अपने भाई की बेटी से की है, ये जालिम उसको पूछता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं पूछता, नाम लेके उन्होंने हीरोइन का बताया, कहता है मुझे वैसी चाहिए। पता नहीं हमारा क्या जुर्म है, हमने तो बड़े अरमान थे कि अब, मैंने कहा सच बताएं उसका नाम क्या, उसको दिखाई किसने थी, घर में देखी है ना आपने, टीवी में दिखाई, फिल्म में, उसने वीसीआर में देख ली, तभी उसको पता है ना, तो ये जुर्म है। आज इन सारी चीजों का असर है, सच्चा दीन होगा, लड़कों की नजरें झुकी होंगी, बेटियां इफ्फत माब होंगी, आप देखिए आपके बेटी बेटियां बहू बेटे सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। उस मर्द को तो अपनी सारी ख्वाहिशें अपनी बीवी से पूरी करनी है, तो जो मर्द नाचती फुदकती तस्वीरें फिल्में गंदगी बेहूदगी देख चुका, बीवी में कशिश ही नहीं रहेगी। ये भी सच है, आज जो मर्दों को अपनी बीवियों से कोई कशिश नहीं दिखती, उसकी वजह यह है कि वो सारे जज्बात तो बाहर पूरे कर चुके, कहीं देख लिया तो कहीं कुछ, सुन लिया तो कहीं कुछ, तो ये सारी चीजों का एक गैर मखसूस असर है, इसकी जद में आज उम्मत मुस्लिम आई हुई है। आप करना चाहते हैं इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करके देखें, आपको अपने घर में बहुत सुकून मिलेगा। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, जिना काम होना और सूद काम होना, ये दोनों एक ही हदीस में इमाम हाकिम इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इजा ज़हर जिना वर रिबा फी करियतिन फकद अहल्लु बिअन्फुसिही मज़ाब अल्लाह, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह ताला के अजाब को हलाल कर लिया। नोट करें, यानी इन चीजों को आम करके हम अल्लाह ताला को इजाजत दे रहे हैं अपने हिसाब से कि आप हमारे ऊपर अजाब ले आइए, अपनी पकड़ हमारे ऊपर ले आइए। इस पे कुछ कहने की जरूरत है, आज आप देखिए जिना इंसानी ताल्लुकात में और सूद अल्लाह के साथ ताल्लुक के बीच में या मुआशी मामलात में आम हो चुका है। और आज आप देखिए कि वो सारी हदीसें साबित हो रही हैं कि एक वक्त आएगा कि किसी को सूद ना भी वो लेगा तो उसका गुबार तो जरूर पहुंचेगा। पूरा दुनिया का निजाम बैंकिंग के नाते से जो बन गया वो तो बना ही होगा, लेकिन असल में हमें अपने मुसलमानों को देखना है। आप इसके अंदर जितनी भी हदीसें आई हैं उसको पढ़िएगा, सारी बात का खुलासा यही है कि किसी कौम को तबाह करने में सूद और जिना ये दो बहुत बुनियादी काम करते हैं और अल्लाह की पकड़ आती है। बल्कि अगले अगर आप पेज 115 में देखिए तो इन्होंने डिटेल भी लिखी है कि ये अजाब जो आते हैं ये ऐसी बीमारियों का आम होना जिनका पता ही नहीं चले। आज ऐसा है, छोटे छोटे बच्चों को वो बीमारियां बताई जाती है जो कभी सुनी भी नहीं होती, ताऊन का आना। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला के अजाब के आने की जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, तंग दस्ती, गुर्बत, इफलास, महंगाई, आज ये सब कुछ है, दिखता है कि नहीं दिखता। तो आज आपको इन आयतों को, हदीसों को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये वो चीज़ है जिससे अल्लाह ने मना किया था। सूरत बकरा 276 में आता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। तो हमें भी ऐसी सोसाइटीज़ बनानी है जहाँ सदके का रिवाज हो और दूसरी चीज़ें इससे पीछे हो जाएं। अल्लाह ताला हमें बचाए। इसके ऊपर फिर मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आज फ़ी ज़माना सूद और उससे मुतल्लिकात सुनना चाहें। अभी हमने तुलुहुल कुरान में जो जब ये आयतें पढ़ी तो मैंने इसको वेस्ट के इस निज़ाम के साथ स्टेप बाय स्टेप टैली करके दिया, ताकि हम सब जो यहाँ रहते हैं बाहर के मुल्कों में उनके प्रैक्टिकल इश्यूज समझ आएँ। तो अगर आप सुन सके कभी भी, अगर आपको इस मौजू पर डिटेल मिले तो ज़रूरी है सुनना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर हम अपने बच्चों को सूद और कर्ज़ों के जाल से बचा सकें, ताकि हमारे बाद वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से चला सकें। फिर इसके बाद आगे देखिए 118 पेज पर, नापतोल में कमी करना, ज़कात ना देना, अल्लाह ताला और रसूल करीम के अहद का तोड़ना और शरीयत इलाहिया के मुताबिक फ़ैसला ना करना, ये सारे काम अल्लाह के अजाबों को कैसे लाते हैं, इसकी दलील इब्ने माजा और इमाम हाकिम ने अब्दुल्ला बिन उमर से नकल किया। अल्लाह के नबी हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, नोट कीजिए अल्लाह के नबी का बात का अंदाज, पहले तवज्जो देते थे फिर बात करते थे। क्या फरमाया, या माशरल मुहाजरीन खमसुन इज़ब तुली तुम बिहिन्ना वाउज़ु बिल्लाही अन तुदरिकू हुन्ना। तर्जमा देखिएगा, ए गिरोहे मुहाजरीन, जब तुम पांच बातों में मुब्तला किए जाओ और मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूं कि तुम इन्हें पाओ। कौन सी पांच चीजें? किसी कौम में कभी जिना आम नहीं होता यहाँ तक कि वो इसे ऐलानिया करना शुरू कर दें, मगर इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो कि इनसे पहले लोगों में नहीं थी। ताउन को शायद आज हम ना समझें, लेकिन पेट का कैंसर तो सुना ही हुआ है ना, बीमारी होती है ये एक। आज आप देखिए कि कैंसर कितना आम है। ये जो कैंसर भी है ना, ये असल में एक गुनाह ही की पैरोडी है कि जब किसी बस्ती में जिना आम होता है तो वहां पेट की बीमारियां आम हो जाती हैं। फिर इसी तरह वो नाप तोल में कमी नहीं करते, मगर वो कहत साली मईशत की सख्ती और हाकिम के उन पर जुल्म व सितम के अजाबों में मुबतला किए जाते हैं। है आज हुक्मरानों का जुल्म, आज मईशत की सख्ती है। ये हमारा रुपया किधर गिर रहा है, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है पूरी दुनिया में, इवन आप देखिए सारी दुनिया की करेंसी फ्लक्चुएट कर रही हैं। डॉलर किधर से किधर गया, पाउंड किधर से किधर गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सीक्वेंसेस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये नताएज हैं इन गुनाहों के जिनका तस्करा इधर हुआ। फिर इसी तरह वो अपने मालों की ज़कात नहीं रोकते, मगर आसमान से उन पर बारिश रोक ली जाती है, और अगर चौपाए ना हो तो इन पर बारिश ना की जाए। आप देखिए खुश्क साली क्यों होती है कि लोग ज़कात नहीं देते। आपको हैरत होगी कि आज मुसलमानों में से 90% लोग ज़कात नहीं देते। और है कितनी ज़कात? 100 में से 2.5 रुपए। 2.5 यूरो का क्या आता है? इधर शायद सैंडविच भी नहीं आता होगा। एक सैंडविच की कीमत, साल के बाद वो पैसा जो आपके पास पूरा साल पड़ा रहा वो देना मुसलमानों को मुश्किल है, तो मुझे बता सकते हैं कि इससे एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि 2.5 तुम रख लो और 97.5 मुझे दे दो। अगर ऐसा होता तो जरा सोचिए क्या हाल होते। तो याद रखिए, जब बारिश ना हो तो उसके पीछे ये बहुत बड़ी एक वजह नजर आती है हदीस की रोशनी में। फिर इसी तरह एक रिवायत इमाम तबरानी ने इब्ने अब्बास से नकल की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खमसुन भी खमसिन, पांच के बदले पांच। ये आपका बड़ा प्यारा अंदाज था, छोटी सी बात करके लोगों को मुतवज्जे करते थे, फिर उसको एलैबोरेट करते थे। पांच के बदले पांच क्या है, सहाबा ने पूछा, तो आपने फरमाया, मा नकज़ा कौमुन अल-अहदु इल्ला सुल्लित अलैहिम अदुवुहुम। कोई कौम अहद शिकनी नहीं करती मगर इन पर इनके दुश्मन को मुसल्लत किया जाता है। अब अहद शिकनी कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम वादा करते हैं अल्लाह से लेकिन हम इसको पूरा नहीं करते, तो जब कौम ऐसा करेगी अल्लाह उनके दुश्मनों को मुसल्लत करेगा। दूसरी चीज, और वो अल्लाह ताला की नाजिल करदा चीज यानी शरीयत के अलावा किसी दीगर चीज के साथ फैसले नहीं करेंगे मगर इनमें तंगदस्ती आम हो जाएगी। आज देख लीजिए हर बंदा तंगदस्ती का शिकार है, जो थोड़े कमाता था वो थोड़ा परेशान है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा परेशान है, लाखों वाला लाखों के खर्चे में पड़ा हुआ है, जो करोड़ों वाला है वो करोड़ों के चक्कर में। एक अजीब सी ऐसे लगती है कि बेबरकती हमें मुसलमानों के हालात में आज दिखती है, वजह सामने लिखी हुई है। फिर तीसरी चीज, उनमें बदकारी मुंतशिर नहीं होगी मगर मौत इनमें आम होगी। सच बताएं कितनी कसरत से मौतें हो रही हैं, और रिवायत में यहां तक आता है कि जब बेहयाई बुराई आम होगी तो जवानों की मौत कसरत से होगी, अचानक मौत कसरत से होगी। पहले तो कभी कोई सुनते थे बूढ़ा मरा, कोई बीमार मरा, आज यकीन करें बूढ़े रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे बूढ़ों को, शायद दुआओं के लिए रह जाते, जवान बच्चे चले जाते हैं। आज सुबह भी मुझे खबर मिली जवान बच्चे की डेथ हुई है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर हमें अपनों में मिल रही है। ओवरऑल दुनिया में तो लोग हजारों लोग मर रहे होंगे, तो ये भी गुनाहों की एक सजा निकलती है। फिर फरमाए वो ज़कात नहीं रोकेंगे मगर बारिश को इनसे रोका जाएगा, वो नाप तोल में कमी नहीं करेंगे मगर फसल उनसे रोकी जाएगी, और वो कहत में मुब्तला किए जाएंगे। एक और रिवायत है इमाम हाकिब से हजरत बुरैदा की, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा नकद कौम कत्ला कानल कत्लु बैना होम, कि जब कोई कौम अहद शिकनी करती है तो उनके दरमियान कत्लो गारत गरी आम है। कत्ल कितना आम है, पहले कहते हैं कि कोई मरा जाता था ना तो सुरखांदी चलती थी, सुनी हुई है ये बात, लोग कहते थे आज बड़ा अंधेर पड़ गया। आज आप सोचिए अगर यही असूल हो तो हर वक्त ही आंधियां चलती रहे। फिर इसी तरह किसी कौम में कोई बदकारी आम नहीं होती मगर अल्लाह ताला इन पर मौत मुसल्लत फरमा देते हैं, कोई कौम ज़कात नहीं रोकती मगर अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेते हैं। ये सारी बातें जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, अगर आप इसकी डिटेल्स इसमें मजीद पढ़ें तो बात बिल्कुल वाज़ह है, जैसे गुना वैसी सजा। तो हमें तो किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं। आज अमूमन हम कोई भी खराब चीज देखें ना तो हम अमेरिका का नाम लेंगे, और हम कभी किसी काफिर की बात कर देंगे, किसी की नजर लग गई कोई हमारा दुश्मन है। आप अभी तक जितनी बातें पढ़ रहे हैं खुद से पूछिए इसके बाद मुजरिम कौन दिखता, हम खुद हैं। वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। फिर इसी तरह अगला जुर्म जिस पे दुनिया में सजा मिलती है वो है फैसलों में जुल्म करना। आज जुल्म देख लीजिए, और आज हमारे अदालतों के जो फैसले हैं वो भी हमारे लिए एक मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि हम अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत इमाम बहकी में, कोई कौम फैसले में जुल्म नहीं करती मगर अल्लाह ताला इनके दरमियान लड़ाई बर्पा कर देते हैं, मेरा गुमान है कि उन्होंने ये भी फरमाया और कत्लो गारत। नासरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि इब्ने अब्बास का ये कौल है लेकिन ये मरफू है, नबी सल्लम के हुक्म के मुताबिक है। क्या आज हमारे मुल्क में जुल्म होता, अल्लाह किसी को अदालतों में ना लेकर जाए। एक मौके पर ऐसे ही स्कूल का एक काम था तो मैं किसी के साथ थोड़ी देर के लिए गई, अपने मुल्क की बात है, मैंने वहां का जो माहौल देखा और जो वहां मैं कहती हूँ लोगों को सजा देते हैं कि आप आ गए अदालत में भुगते हैं, पूरा पूरा दिन लोग वहां खड़े रहते हैं, मुझे ये बात याद आ गई कि आज हमारे मुल्क की हालत क्यों नहीं बदलती। गालिबन इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का एक कौल है कि कोई हुकूमत कुफर की बुनियाद पर कायम रह सकती है, जैसे ये मुल्क, दुनिया के बहुत सारे मुल्क कुफर के साथ है लेकिन रह रहे हैं, लेकिन जुल्म के साथ कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हमारे मुल्कों में जुल्म है, बेइंसाफी है, पता नहीं ये तो अल्लाह का तहम्मुल है। ये आयतें पढ़ के तो लग रहा है कि हम बचे हुए कैसे हैं, अभी जुर्म तो इससे बहुत ज्यादा है हमारे। फिर इसी तरह से आप देखिए अगली बात जो इधर इन्होंने नोट की हुई है वो क्या है कि नाम बदलकर शराब नोशी करना और सरों पर गाने बजाने के साजो सामान और मुगनियात का होना। मुगनियात कौन होती है, सिंगर्स, गाना गाने वालियां। थोड़ी सी हदीस फर्क है, पहले ये मौजू गुजरा लेकिन हदीस सुन लीजिए, काफी बातें इसमें शरह सदर वाली हैं। आपने फरमाया यकीनन मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को गैर हकीकी यानी कोई और नाम देकर जरूर पियेंगे, इनके सरों पर गाने बजाने के साजो सामान और गाने वालियां होंगी, अल्लाह ताला इन्हें जमीन में धसा देंगे और इनमें से कुछ को बंदर और खिंजीर बना देंगे। हदीस वाजे, लेकिन जब भी कभी पहले पढ़ते थे ना, आज से 10-15 साल पहले, तो ये बात जो थी ना कि इनके सरों पर गाने बजाने वालियां होंगी तो समझ नहीं आती थी, आज इसका जवाब मिल गया, हेडफोन्स। आप कभी बसों में सफर करके देखे, ट्रेनों में देखे, इवन गाड़ी में अपने साथ बैठों को देखे ना, आपकी बात नहीं सुन रहे होते, पता चलता है कानों में कुछ लगा हुआ है, और वो जो डायरेक्ट कानों में हिट करती हैं आवाजें। आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, नॉन मुस्लिम्स तो हैं ही हैं, जो भी है, आप देखिए कि आज गाना सुनना या उसको अपने कानों में डालना, आप साथ बैठे को डिस्टर्ब ही नहीं करते। हमारे मुल्क में तो मसला ये है कि आप बस में बैठ जाएं तो आपको सुनना पड़ता है, यहाँ वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अपना सुन रहे होते हैं, आप जो मर्जी करें, जहाज़ों में देख लीजिए। तो ये चीज़ भी अल्लाह के अजाबों को लाती है। अल्लाह ताला हमारी उम्मत को इन सारी चीज़ों से बचा कर रखे। और फिर उसके बाद अगला जुर्म देखिएगा, तिजारत में झूठ और सौदे का ऐब छुपाना। अगर आप में से कभी किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप इसको सुन लें। हदीस सुनते हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हकीम बिन हिजाम से ये बात नकल की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेने और देने वाले यानी बेचने और खरीदने वाला दोनों को जुदा होने तक इख्तियार रहता है। अगर दोनों ने सच बोला और सौदे की सूरत हाल को खूब वाजे किया तो इन दोनों के लिए इनके सौदे में बरकत डाली जाएगी, और अगर उन्होंने झूठ बोला और छुपाया तो उनकी बरकत मिटाई जाएगी। इसमें क्या पता चलता है जी, कि तिजारत फेयर बेस्ड होनी चाहिए। आज है सर, देखिए इन मुल्कों में आप फिर भी कॉन्फिडेंस से शॉपिंग करते हैं कि चीज़ ना पसंद आई तो वापस, कुछ मुद्दत होती है ना, ऐब आ गया, नक्स आ गया तो फिर तो और ही बात है। अपने मुल्कों में क्या ले के वापस आ जाए, बाहर जाके देखें, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। एक टिकट थी तो हम लोगों ने टिकट खरीदी इधर से, और ऑनलाइन पे उन्होंने लिखा होता कि पे पाकिस्तान में होगी, टिकट मौजूद है, इन्वेंट्री मौजूद है, उसके ऊपर पैसे मौजूद है, हम लोगों ने अपनों में से किसी को पैसे देकर भेजा कि जाकर किसी PIA के ऑफिस में बस आपने ये PNR नंबर देना है और आपने इस टिकट को पे करवा देना है। अब वो जो गए उनको क्या पता क्या इनके अंदर काम है, बिलीव मी कि इतना धोखा आप सोच नहीं सकते। और राइट अवे उन्होंने वो पैसे अपने हिसाब से टिकट बुक की, जितने की इधर इन्वेंट्री थी, उन्होंने कहा कि नहीं करेंसी पाकिस्तान की चाहिए, वो लेकर के यहाँ की करेंसी, हमारा ख्याल था कि जहाँ की टिकट है वहाँ की करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी हम पाकिस्तानी करेंसी चेंज करेंगे और आप जाइए मनी एक्सचेंज से ये पैसे चेंज करके लाएं। वो कहीं अल्लाह का हुक्म अच्छा हो गया कि वो करेंसी चेंज वाला दुकान बंद हो गई, वापस आई, उन्होंने टिकट को के कर करा दिया, उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, उन्होंने कहा नहीं पैसे पूरे दे, नहीं आपके कैश कितना है, 30,000 कहते हैं हमारे पास था, उन्होंने कहते ये दे दे तो टिकट आपको कल बाकी आके पैसे दे दे। ये इतनी सी बात करके वो जब बात हमारे तक पहुंची, जब टिकट की उन्होंने कीमत बताई 30-40 हज़ार रुपये टिकट एक के हिसाब से महंगी थी, भाई ये आप किधर है, वो कहते हमें क्या पता, हमने समझा जितने क्रोन थे उतने के पाकिस्तानी रुपए इतने ही होते हैं। खैर हमने उनको फौरन का और उसका नंबर लेके इधर से फौरन मैसेज दे दिया कि हमें टिकट नहीं लेनी, ये आप तो अपने सिस्टम से खरीद के दे रहे हैं और ये महंगी है। किस्सा मुख्तसर, विद इन 1 आवर ये सब कुछ हुआ। हमने कहा कि हमें इतने की देने ही थी, नहीं हम तो अपने सिस्टम से दे रहे हैं। जो सारी बात का खुलासा बाद में निकला, 5,000 रुपये उन्होंने राइट अवे कैंसिलेशन चार्जेस हमसे लिए, और जब हमने वही PNR नंबर देकर हमारे अपने साथियों में PIA के डायरेक्ट काम करने वाले, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपका तो PIA ने एक पेनी नहीं ली, कई टिकटें कस्टमर आते हैं पे ओके कराते हैं फिर जाके कहते नहीं ली, उन्होंने आपकी होल्ड की थी लेकिन जो ही आपने फोन किया तो उन्होंने उसको वॉइड कर दिया, सिस्टम पे ये वॉइडेड दिख रही है, ये 5,000 रुपये जो वो आपसे PIA के कैंसिलेशन चार्जेस ले रहे हैं ये PIA को नहीं जाएंगे, ये इनकी एजेंसी को जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने हमसे ले क्यों, वो कहते हैं कस्टमर हाथ आ गया और पैसे जो 30,000 आप दे आए हैं वो फंस गए, पैसे ना दिए होते आप कहते नहीं लेनी, खत्म हो गई बात, कोई नहीं मानता, यानी घर आया पैसा कोई देता ही नहीं है। वल्लाह ये हमारे मुल्क की बुराइयां हैं जो मैं कभी गैरों में ना बैठ के करूं, लेकिन ये आज जहां तक आवाज पहुंच सके, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से तकलीफें ना, मैंने उनको कहा आखिर में मेरी इधर से बात उनसे हुई, मैंने कहा, और उससे 2 दिन पहले जहाज गिरा था, मैंने कहा ये मैं अपनी एयरलाइन का सदका समझ के आपको 5,000 दे रही हूं कि अल्लाह आगे से हमारी एयरलाइन को बचाए, मुझे क्या पता एयरलाइन को जा रहा है कि इनको जा रहा है, लेकिन वो नहीं अखीर तक माने, उन्होंने हमें यही साबित किया कि ये पैसे PIA को जाएंगे, हालांकि PIA को वो नहीं गए। आप मुझे बताइए कि अल्लाह की तरफ से तो लाखों का नुकसान बर्दाश्त किया ना हमने, लेकिन अपनी जेब में आया हुआ पैसा हम वापस नहीं करते। और जिससे बात करें वो कहते थे हम तो इम्प्लाई हैं, हमें नहीं पता जी, वो हमारा आगे वो ऊपर है। तो ये जो तिजारत में झूठ और सौदे का ऐब छुपाना, आप चीज लेके बाहर निकले वापस जाएंगे अगला आपसे नहीं लेगा। जो मर्जी कह दे, वो कहते नहीं जी ये हमने आपको ठीक दी थी। तो याद रखिए कि एथिक्स पे कौमें चलती हैं, अखलाकियात बेहतर करें। अगर हमें अपने प्यारे मुल्क को वाकई पाकिस्तान बनाना है तो इस बातों को जो हम पढ़ सुन रहे हैं इसको आम करने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ जब किसी को ये पता लग जाए वो तो कभी ना छोड़े फिर, क्योंकि ये चीजें कल हमारे कारोबार में बरकत लाएंगी। आज आप देखिए इतनी डंडी मारना, इतना सौदा, एक गज कपड़े में से वो 2 इंच बचा के क्या कोई महल बना लेंगे, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है। फिर ऐब छुपाने वाली बातों पे नबी सल्लम का वो वाक्य आपको याद होगा कि आपने एक ऊंट बेचा, जल्दी में बेच दिया, बाद में ख्याल आया तो फौरन उसके पास गए, कहा तुम्हें पता उससे उनमें से एक ऊंट की टांग में खराबी थी, तुम चाहो तो वापस कर दो, चाहो तो रख लो। नहीं बताया था। इसी तरह आप एक जगह गए तो गंदम का ढेर था, आपने जब हाथ डाला तो नीचे से गंदम गीली थी, तो आपने कहा कि गीली गंदम को ऊपर करो और दिखाओ देखने वालों को कि ये भी गीली है। हमारे कहते हैं ना ही पता चले, एक दफा बाजी से पैसे ले लो, बाद में घर जाके देखेगी तो निपट लेंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। फिर अगली चीज देखिए, झूठी कसम खाना। बात बात में तो लोग कस्में खाते हैं और झूठी कस्में होती हैं। इस पे जो रिवायत है नबी सल्लम की, इमाम बज़ार ने अब्दुलरहमान बिन औफ से नकल की है, अल यमीन उल फाजिरतु औ तसहबु बिल माल, झूठी कसम माल को ले जाती है। इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत है इमाम बहकी की, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यमीन उल फाजिरतु तदउ दियारा बलाकिया, और झूठी कसम शहरों को उजाड़ देती है। कितनी कस्में खाते हैं लोग आज, बात बेबात कसम खाते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। फिर अगला अमल है हराम को हलाल करने की खातिर हीला साजी करना और जिहाद तरक करके ज़रात में मगन रहना। सच बताएं सर शर्म से झुक नहीं रहा ये सारी बातें पढ़ के? बात ऐसी है कि वो सोचा किसी और का था, कसूर अपना निकल गया। हर चीज आज हमें मुसलमानों में दिख रही, फिर हमारी इज्जत कौन करे? आप दुनिया को इस्लाम देने जा रहे हैं, हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिसको पहले सादिक और अमीन का टाइटल मिला था। एक जुमला लिखिएगा, दावत देनी है ना, तबलीग करनी है, दूसरों को इस्लाम देना है, पहले सादिक और अमीन का टाइटल लीजिए। आज लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि मुसलमान कौन? सादिक और अमीन। मुसलमान कौन? झूठ नहीं बोलते। मुसलमान कौन? जो धोखा नहीं देते। आप कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, लोग रोते हैं, कहते हैं सैंपल जो आता है वो दिखा के हम बाहर से ऑर्डर लेते हैं, और जब 2-3 महीने के बाद माल आता है तो वो तो सौदा ही बदल गया, वो जी अब तो ये चमड़ा ही नहीं मिलता और ये तो लेदर ही नहीं है। यानी आखिरी वक्त तक आपको यकीन नहीं होता कि चीज़ आएगी क्या। तो ये सब कुछ आज आपको इर्द गिर्द दिखेगा। इमाम अबू दाऊद ने इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम ईना के जरिए से लेन देन करोगे, ईना असल में किसी शख्स को कोई चीज उधार फरोख करना, फिर कीमत वसूल करने से पहले वही चीज इस शख्स से कम कीमत नकद देकर खरीद लेना। समझ रहे? धोखा है ना। किसी को उधार पे दिया, अब वो पैसे नहीं दे सका तो फिर कम पैसों पे वो चीज वापस ले ली। जैसे लोग कहते हैं ना, अच्छा अब इसकी तो मजबूरी है, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना समझ ले, ये नाजायज है। फिर गायों की दुमों को थाम लोगे, खेती पर मुतमईन हो जाओगे और जिहाद छोड़ दोगे तो तुम पर अल्लाह ताला जिल्लत मुसल्लत फरमाएंगे, जिससे वो तुम्हारे दीन तक पलटने तक दूर नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए ये सब कुछ आपको उम्मत मुस्लिमा में दिखता है कि नमाजें जा रही हैं, कारोबार कर रहे हैं, हय्या अलस्सलाह अलफलाह है, हम बैठे हैं काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी में कोई लगा हुआ, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब नमाज रोजे को छोड़कर ये काम करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। और रह गई बात जिहाद छोड़ने की बात, तो ये कोई ढकी छुपी है। आज तो लफ्ज जिहाद बोलते हुए लोग डरते हैं, कहते हैं लफ्ज ये ना बोलिएगा, इस मौजू पे बात ना करिएगा, तो जिहाद करना किसने है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। तो आज उम्मत मुस्लिमा पे जो मुसीबतें आई हुई है उसकी वजह जिहाद का इनकार भी है। हमने उसकी स्ट्रगल को समझा ही नहीं। अल्लाह के नाम को बुलंद करने की हर कोशिश जिहाद है, किताल तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो आखिर में होता है, हर वक्त तो किताल नहीं होता लेकिन जिहाद तो हर वक्त हो रहा होता है। फिर उसके बाद देखिए माले गनीमत में खयानत, बस इसका नाम बदल लें, मुल्की खजाने को लूट लेना, इज्तमाही माल का खराब करना। ये माले गनीमत कौन सा होता है जो उम्मत मुस्लिमा का इज्तमाही माल होता है? आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं। इमाम मालिक ने यह कॉल नकल किया हजरत इब्ने अब्बास के जरिए से, किसी कौम में कभी भी माल गनीमत में खयानत जाहिर नहीं होती मगर अल्लाह ताला इनके दिलों में दुश्मनों का रोब डाल देते हैं। नोट करें, जो पब्लिक एसेट्स को, इज्तमाई माल को अपने जाती काम पे लगाएगा, अल्लाह दुश्मन का रोब उसके दिल में डाल देगा। दूर बैठे कांप रहे हैं, उनकी बुरी शर्तों को मान रहे हैं, वो कहना चाहिए वन साइडेड, सारी शर्तें मानकर कर्जे सूदों पे ले दे रहे हैं, लेकिन खौफ बहुत है उनका। वजह क्या है कि खुद माल खाते हैं। आज आप देखिए सच है कि झूठ है, कभी आप सियासतदानों के एसेट्स की खबरें भी सुनते ही होंगे ना। चंद दिन पहले एक रिपोर्ट किसी ने भेजी और एक छोटा सा अपार्टमेंट था और कहा बताइए कितने का होगा, तो किसी ने कहा ये लियारी में होगा तो इतने का होगा, मलीर में होगा तो इतने का होगा, चंद लाख की बात थी। और जब उन्होंने उसकी असल बताई कि ये शायद कितने 3 मिलियन पाउंड्स का महल है और है किसका, वो आपके अपनों का नाम ले रहे थे। अब तो सच है कि झूठ है हमें क्या लगे उससे, लेकिन बात सच है कि जब आपके मुल्क में रोटी ना मिले लोगों को और आप अपने खजानों के रुख दूसरे मुल्कों में खोल दें, तो फिर ये बातें मुल्कों में तो होंगी। और आज आप देख लीजिए कि कौम दुश्मनों का रूप है कि नहीं, आज उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी मरूब है, रोप में भी आई हुई है, डरी भी हुई है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। चलिए ये तो हुक्मरानों की बातें थी, अगली बात मेरे आपके बहुत आम फहम समझने की है, और वो क्या अमल है, हमें वो गुना भी नहीं लगता, ये जो पढ़ने लगी है ना ये कोई गुना नहीं लगता, लेकिन आज लाइफस्टाइल है वो क्या, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। सच बताएं कि आज उम्मत मुस्लिमा को दुनिया से मोहब्बत है और मौत से नफरत है? हमारे लिए मौत खूबसूरत पैगाम कहाँ रह गया, हमें तो डिप्रेशन हो जाता है मौत का लफ्ज सुनकर। हालांकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है हजरत सोबान से, आपने फरमाया करीब है दीगर उम्मतें आपस में एक दूसरे को तुम पर इस तरह टूट पड़ने की दावत देंगी जिस तरह खाने वाले अपने खाने के प्याले की तरफ एक दूसरे को दावत देते हैं। ये सुनकर एक कहने वाले ने कहा, यह सवाल बड़ा मासूम सा है, क्या कहा, वमिन किल्लत नहनु यौमैज़िन, क्या ये सूरत हाल उस दिन हमारी कलील तादाद की बिना पर होगी? तो आपने फरमाया बलन तुम यौमैज़िन कसीरुन, बल्कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन उन सैलाब के झाग की मानित हो गए, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब जरूर खींच लेंगे और बिलाशुबा तुम्हारे दिलों में अलवहन जरूर डाल देंगे। कहने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह व मल वहन, वहन क्या होता है? तो आपने फरमाया, इसको हाईलाइट कीजिएगा, हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, ये है असल में वहन। तो इससे क्या पता चलता है कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि नहीं, काफिर भी उसी दुनिया के पीछे भागता है जिस पे मुसलमान भाग रहा है, काफिर भी उस मौत के नाम पे परेशान हो जाता है जिस पे मुसलमान परेशान है, तो फिर अल्लाह की मदद कहाँ आए? यकीन कीजिए कि वो कहते हैं ना कि मोमिन को मौत से प्यार होता है क्योंकि उसके बाद ही जन्नत है और उसी के बाद रब का दीदार है। अल्लाह ताला हमारा दिल दुनिया से हटाकर आखिरत में लगा दे। अगला अमल भी देख लीजिए, बड़ा कॉमन है, और वो क्या है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का छोड़ना, दावत और तबलीग छोड़ देना, लोगों को बुराइयों से रोकना छोड़ना और नेकियों का हुक्म छोड़ना। और हदीस बड़ी खूबसूरत है, हवाला लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लजी नफ्सी बि यदिहि लतामुरुन्न बिल मारूफ वलतनहवुन्न अनिल मुनकर, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन तुम नेकी का हुक्म दोगे और बेशक तुम बुराई से जरूर मना करोगे, वरना बिला शक तुम पर अल्लाह ताला अपनी जानिब से अजाब जरूर भेजेंगे, फिर तुम यकीनन इनसे जरूर दुआ करोगे लेकिन वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि आज हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? काबा में जाकर रमजान में ताक रातों में 27वीं रात में हम दुआएं करते हैं और क्या वो कबूल होती भी दिखती हैं? अल्लाह ताला ही हमारे लिए ये सारी बातें आसान कर दें, वरना बात बनती नहीं दिखती। पर आज लोग क्या कहते हैं, क्यों बुरा बनूं, सबको पता है सबके घरों में कुरान है। यकीन करें हराम काम होते हैं हम आंखों से देखते हैं, अपने प्यारों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, बच्चों के, बाज दफा अपने भाई बहनों के, लेकिन क्या कहते हैं आगे से, कहते हैं मैं क्यों बुरी बनूं, मैं अपना ताल्लुक क्यों खराब करूं। और सबको पता है अगर अल्लाह के नबी का ये एटीट्यूड होता ना तो वल्ला ही इस्लाम ना फैलता। आपकी तो 13 साल की सारी जंग ही इस बात के खिलाफ थी कि आप लोगों को इस बात की दावत देते रहे कि लोग बुराई को छोड़े। आप कभी कुरान पढ़े ना तो आपको ये बात और भी अच्छी समझ आ जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हर नबी ने जिस मुआशरे में आए सबसे बड़ी जो वहां बुराई थी ना उसको हाईलाइट किया। सच, हजरत शुएब किस बात को रोक रहे, नापतोल की कमी, कौमे लूत के लिए हजरत लूत का क्या पैगाम था, होमोसेक्सुअलिटी छोड़ दो, है कि नहीं है। अगर नबी उस दौर की बुराई को छोड़ देते कि जाने दो, तो वो वहां के पसंदीदा लोग थे। हजरत शुएब को उनकी कौम कहती थी, तेरे पे तुम्हारी बड़ी नजरें लगी हुई थी। नौवें पारे का शुरू पढ़ लीजिए, सूरत अल अराफ है। कहते तुझसे तो हम बड़ी अच्छी अच्छी उम्मीदें रखते थे, तू क्या मौलवी बन गया, तूने क्या हमारे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। आज भी यही है, हम अपना आप बचा लेते हैं लेकिन हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हुआ है। क्या पढ़ा है हमने? अब वो गुनाह जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की रोशनी में दुनिया में अजाबों के आने की वहीद सुनाई गई है। किसी ने लिस्ट बनाई है टोटल कितने काम जमा हुए हैं? 28। आज हमने इन 28 कामों पे गौर व फिक्र करना है, और आप और मैं जितना इस पे गौर करें उतना कम है। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पता नहीं क्या सोच लेकर जाते हैं, लेकिन कसूर आपका अपना ही निकलता है। बद परहेजी आपने की होती है, गलत चीज़ें आपने खाई होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौजू पढ़ने के बाद कम अज़ कम हमारा ये गिला ख़त्म हो जाएगा कि अल्लाह हम पे बड़ा सख्ती करता है या जुल्म करता है। इंशाल्लाह ताला अगला मौजू कल लेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।